नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और सलीम खान की और इन दोनों सितारों की निजी जिंदगी में किस तरीके से, दोनों के संबंधों में, निजी संबंधों में किस तरीके से उथल पुथल चली। और फिर हम बात करेंगे दो दौर की। एक दौर जब राजेश खन्ना ने सलीम खान से कह दिया, सलीम खान से तो नहीं कहा, अपने नौकर से कह दिया कि जाओ सलीम से कह दो मैं उससे नहीं मिलूंगा। और दूसरा किस्सा दूसरे दौर का, जब काका को देखकर सलीम खान भावुक हो गए थे। 1970 के दशक में राजेश खन्ना अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर में थे। स्टारडम ऐसा जिसके आसपास कोई दूसरा स्टार नहीं था। दिलीप कुमार से लेकर देवानंद तक कोई उनके स्टारडम को हिला नहीं सका, लेकिन वो ऐसे स्टार रहे जो अपने स्टारडम को बचा नहीं सके। एक के बाद एक 17 सुपरहिट फिल्में देकर वो हिंदी सिनेमा में उन्होंने एक ऐसा नया रिकॉर्ड तो बनाया, लेकिन घमंड ऐसा सवार हुआ कि सब उनके हाथों से फिसलता गया। 70 के दौर में जब पर्दे पर एक के बाद एक स्टार्स एंट्री ले रहे थे, उसी दौरान काका के हाथों से सब कुछ रेत की तरह फिसल रहा था। प्यार, परिवार और फिल्में। लेकिन फिर वो दौर भी आया जब कुछ भी नहीं बचा। राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के एंट्री ली। फिल्मों में आना तो जैसे वो किस्मत में लिखवा कर आए थे। एक दौर में राजेश खन्ना की लोकप्रियता का आलम यह था कि उनके घर के बाहर दिन रात हजारों की तादाद में फैंस खड़े रहते थे। घर के ड्राइंग रूम में फूलों के गुलदस्तों से वो ड्राइंग रूम पटा रहता था। और जो उस दौर में बंबई में रहते हों और बंबई के कार्टर रोड पर राजेश खन्ना का वो आलिशान बंगला आशीर्वाद उन्होंने देखा हो, तो फिर वो इस बात से खुद को जोड़ पाएंगे। लेकिन फिर उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हुआ, जिसके बाद वो एक नाम राइटर को जिम्मेदार मानते हैं, नामी राइटर सलीम खान को। और आज के इस पॉडकास्ट में हम वही किस्सा आपको सुनाने वाले हैं। और ये उन दिनों की बात है जब राजेश खन्ना को काम मिलना बंद हो गया था। कमोवेश या बहुत उस तरह की फिल्में नहीं मिलती थी जिस लेवल के राजेश खन्ना सुपरस्टार थे। पत्नी डिम्पल से रिश्ता अच्छा नहीं था और वो भी अपनी दोनों बेटियों के साथ अलग रहने लगी थी। अब न पहले जैसी शोहरत थी और न पहले जैसा स्टारडम। वो अकेलेपन का शिकार होने लगे थे। तबीयत बिगड़ने लगी। उस दौरान एक्टर इस कदर अंधेरे में चले गए कि उन्होंने खुद को सबसे दूर कर लिया और फिर शराब से दोस्ती कर ली। राजेश खन्ना को जब कैंसर का पता चला तो वो बेहद डर गए थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके करीबियों और परिवार के अलावा कोई इसके बारे में जान सके। लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में सुगबुगाहट होने लगी थी। एक दिन एक पार्टी में जाने माने राइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान वहां पर पहुंचे तो उन्होंने काका की बीमारी के बारे में उन्हें पता चला, जानकारी मिली। और जब सलीम खान ने तय किया कि वो काका से मिलने जाएंगे, इस किस्से को वरिष्ठ पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान अपनी किताब में इस बात का जिक्र करते हैं। उन्होंने आगे इसमें बताया कि जैसे ही उस रात सलीम खान पनवेल चूंकि नहीं गए जहां वो रहते थे और बंबई में रुक गए, राजेश खन्ना से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे और उनके केयरटेकर से कहा, काका से कह दें कि सलीम साहब मिलना चाहते हैं। अब राजेश खन्ना के पास केयरटेकर पहुंचा तो उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल काका को यह लगता था कि उनके स्टारडम को चूर करने में सलीम जावेद का ही हाथ है और वो मानते थे कि उन्हें जो उनका डाउनफॉल है वो तब आया जब सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन के करियर को चमकाने के लिए धांसू फिल्में लिखी। और राजेश खन्ना के मन में सवाल उथल पुथल कर रहे थे। उन्होंने फिर आओ देखा ना ताओ और सलीम खान से मिलने से साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि जाओ सलीम से कह दो मैं उससे नहीं मिलूंगा। अब कभी अमिताभ बच्चन को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानने वाले राजेश खन्ना तन्हाई में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें कोई भी अच्छा नहीं लगता था। राजेश खन्ना की जीवनी राजेश खन्ना कुछ तो लोग कहेंगे में लेखक और पत्रकार यासिर उस्मान काका के निधन से पहले 2011 का एक किस्सा बयां करते हैं। फिल्म डायरेक्टर अशोक त्यागी के हवाले से वो लिखते हैं कि फिल्म रियासत की शूटिंग हो रही थी और इस फिल्म में राजेश खन्ना का जो रोल था वो ठीक उसी तरह का था जो सरकार में अमिताभ बच्चन ने निभाया था। जब राजेश खन्ना को इस बात का पता चला तो उन्होंने अशोक त्यागी से सरकार और गॉडफादर दोनों की डीवीडी मंगवाई और बैठकर पूरी फिल्म देखी। अशोक त्यागी कहते हैं कि अगले दिन जब राजेश खन्ना सेट पर आए तो उनकी परफॉर्मेंस देखकर सब दंग रह गए। राजेश खन्ना कभी मॉनिटर नहीं देखते थे, वो कहते थे कि हमारे जमाने में कहां मॉनिटर होता था। जून 2011 में राजेश खन्ना की तबीयत जब अचानक बिगड़ गई, डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें कैंसर है और काका को जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। और इन्हीं दिनों का एक किस्सा लेखक सलीम खान बताते हैं कि जब वो, जिसका जिक्र भी हमने आपसे किया कि सलीम खान उन दिनों चूंकि पनवेल के फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए थे और बंबई कम आते थे, लेकिन जब राजेश खन्ना से मिलने की उन्होंने एक प्लानिंग की कि मिला जाए उनसे, तो काका ने मिलने से साफ मना कर दिया। और सलीम खान कहते हैं कि मुझे लगा कि अपने दिल में कोई मलाल नहीं रखना चाहिए और ऐसी हालत में राजेश खन्ना से मिलना चाहिए, चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए। अगले दिन बंगले पर पहुंचा और मैसेज भेजा कि मैं मिलना चाहता हूं, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई और उन्होंने कहलवा दिया कि जाओ कह दो मैं नहीं मिलूंगा। और इन्हीं दिनों एक पार्टी में प्रेम चोपड़ा भी राजेश खन्ना से मिले और वो बताते हैं कि मैंने राजेश खन्ना को गले लगाया, लेकिन उनका रिस्पॉन्स इतना ठंडा था कि मुझे बहुत बुरा लगा। एक तरह से उन्होंने मुझे इग्नोर किया था, लेकिन मुझे इस बात का और अफसोस हुआ कि वो कितने दुखी हैं अंदर से। यासिर उस्मान की इस किताब में फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट के एक बयान का भी जिक्र मिलता है, जिसमें महेश भट्ट ने राजेश खन्ना के आखिरी दिनों का जिक्र करते हुए कहा था कि उनकी हालत आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जैसी हो गई थी। राजेश खन्ना एक ऐसे सुल्तान थे जो अपनी सल्तनत खो चुके थे, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे कि अब उनका दौर नहीं रहा। आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने अपने करियर में 160 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, 100 से ज्यादा फिल्मों में लीड रोल किया। काका ज्यादातर फिल्मों में सोलो हीरो वाली फिल्में करते थे और 14 बार फिल्म फेयर एक्टर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए और तीन बार ये अवार्ड भी जीता। जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव रहे हों, लेकिन एक राजा, एक बादशाह, एक शहंशाह हमेशा वही रहता है, सल्तनत रहे न रहे। राजेश खन्ना की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो महेश भट्ट बिल्कुल सही कहते हैं कि वो एक ऐसे राजा थे जो अपनी सल्तनत खो बैठा था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।